گزرتے لمحوں میں صدیاں تلاش کرتے ہیں، یہ ہماری پیاس ہے کہ ندیاں تلاش کرتے ہیں، یہاں لوگ گنتے ہیں خوبیاں اپنی، یہاں لوگ گنتے ہیں خوبیاں اپنی، اور ہم خود میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں، خود میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ آج کا وشے چہرے اور چلن سے باپ کی سیوا۔ تو بابا کہتے ہیں بچے آپ کا چہرہ باپ کو پرتیکش کرنے والا درپن ہو جائے، لیکن اس پرتیکشتا کو کرنے میں ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں اور کون سی وشیشتائیں ہم نے دھارن کرنی ہیں جن کے دوارا ہم بابا کو پرتیکش کر سکے، اپنے چلن اور چہرے سے باپ کا نام بالا کر سکے۔ اس وشے پر پرکاش ڈالنے ہمارے سمکھ مکھیالے کی مکھی راجیوگ شکشکا آدرنیا اوسا دیدی جی سمکھ میں ہے، اور ہم سب دیدی کا سواگت کرتے ہیں۔ آپ کا جنم جامبیا افریقہ میں ہوا، اور 12 ورس کی ننھی عمر میں آپ کو راجیوگ کا گیان برہما کماریز دوارا ملا، اور 1976 میں جب آپ گجرات کے نواسی بنے تب آپ برہما کماریز کے ریگولر اسٹوڈینٹ بنے، اور 1980 میں آپ نے اپنی شکشا پوری کرنے کے بعد جیون کا سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنا یہ جیون پرماتم سیوا میں ہی لگانا ہے، اور آپ 1980 میں پوری طرح سے اس سنستھا میں سمرپت ہوئے۔ 1980 سے 1992 تک آپ نے بامبے اور حیدرآباد میں اپنی سیوائیں دی۔ 1985 میں بھارت ایکتا یوا پد یاترا میں بھی آپ نے بھاگ لیا، ورتمان میں آپ ہیڈ کوارٹر میں ہی رہتے ہیں، اور آپ نے ہی ایس ایم ایل، جی ہاں ہم سیلف مینجمنٹ لیڈرشپ کے پروگرام بہت اٹینڈ کرتے ہیں، تو دیدی جی کو ہی یہ شرے جاتا ہے اس کاریکرم کو شروع کرنے کا۔ اور مینجمنٹ کورس کے لیے آپ کارپوریٹ سیکٹر میں انوائٹ کیے جاتے رہتے ہیں، اور ٹی وی پر آپ سبھی نے دیدی کے انٹرویوز اور کمنٹری اور کلاسز سنی ہی ہوں گی، اور خاص کر پی ایم چینل میں آج کل دیدی کا شیور کا پروگرام آتا ہی ہے، اور آپ کا ہندی بھاشا کے علاوہ انگریزی اور گجراتی بھاشا میں بہت اچھی پکڑ ہے۔ آپ نے بہت سے سیمینار اور ورکشاپ کرائے ہیں، اور آپ کے اندر ایک بہت اچھی وشیشتا ہے کہ آپ ہم براہمن بچوں کو منن چنتن کر کے کچھ نیا دینے کا ہمیشہ ایک اندر میں امنگ رکھتی ہیں، اور اسی منن چنتن کے دوارا آپ نے رامائن کا آدھیاتمک رہسیہ و مہابھارت اور گیتا کا آدھیاتمک رہسیہ ہم سبھی کے بیچ رکھا ہے۔ اور آج کا جو وشے ہے چہرے اور چلن سے باپ کی سیوا، تو دیدی جی ہم سبھی کو مارگ درشن کریں گی کہ کس پرکار ہم اپنے چہرے اور چلن سے باپ کی سیوا کر سکے۔ آدرنیہ دیدی جی، بیچ میں ایک سوچنا ہے، ایک ایئر بیگ ملا ہے جس پر بی کے سروج لکھا ہوا ہے، جس کا بھی ہو کھویا پایا وبھاگ سے پراپت کر لے۔ ایک ایئر بیگ ملا ہے اور اس پر نام لکھا ہے بی کے سروج۔ آدرنیہ اوسا دیدی جی کو ابھی ایم آئی سونپتے ہیں۔ آدرنیہ دیدی جی،
اوم شانتی۔ باپ دادا نے ہم سب بچوں کو اب تک اتنے گیان گن شکتیوں سے سجایا ہوا ہے کہ اب جیسے بابا کی چاہنا یہی ہے کہ انتیم سمے جیسے جیسے نزدیک آتا جا رہا ہے تو ہر بچہ باپ کا سوروپ بن جائے، اور بابا کی پرتیکشتا کے نمت بنے، ہر آتما کو جب بابا نے چن کر کے اپنا بنایا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آتما پرتیکشتا کے سمے یا انتیم سمے میں ان کا کوئی رول ہی نہ ہو बाबा की सेवा में। हर आत्मा का कोई न कोई विशेष बाबा की प्रत्यक्षता के लिए ऐसा सुंदर पाठ है, लेकिन वो पाठ जब समय अनुसार सामने आए उसके पहले हमें अपने आप को वैसा तैयार कर देना है, ताकि उस सेवा को हम बहुत सुंदर रीति से कर सके, वो बाबा की चाहना को हम पूरा कर सके और उसी के आधार पर जो बाबा कहते हैं कि अंतिम सेवा के आधार से ही नंबर बन जाते हैं। अंतिम अवस्था हमारी कैसी होती है उसी के आधार से नंबर बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जैसे ही हम बन जाते हैं बाबा का वरदान मिलता है। हर ब्राह्मण को बाबा वरदान दे ही देता है, जिससे उसके अंदर वो पात्रता विकसित हो, जो चेहरे और चलन से सेवा कर सके। दुनिया के अंदर भी देखो, जब से बाबा ने आकर के हमें ज्ञान गुण शक्तियों से सजाया और हमारा स्वरूप रूहानी बनाना आरंभ किया, तब से लेकर दुनिया में भी इस बात की जागृति आई कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके पहले कौन जानता था पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? हरेक अपने अपने कार्य क्षेत्र पर जाते थे, लेकिन किसी को भी ये बाह्यता का ख्याल ही नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे बाबा ने हमारे स्वरूप में उस अनुसार क्वालिटीज भरना आरंभ किया, और जब वो चीज दुनिया के लोग देखने लगे, इनमें कुछ विशेष बात है, ऐसी क्या बात है इनके पर्सनालिटी में, तब से उनका ध्यान भी जाने लगा। जबकि हमने कोई बाह्यता से सजावट नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका ध्यान गया और उन्होंने सोचा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए। दुनिया के जो कोर्सेज होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, उसमें दो बातें विशेष अटेंशन दी जाती है या उसी के ऊपर उनका ध्यान खींचा जाता है, और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी चेहरा और चलन दो ही बातें आती हैं। चेहरे में क्या होना चाहिए? तो स्मार्टनेस होनी चाहिए, चेहरे के अंदर एक प्रकार से नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इन बातों को डेवलप करने की वो टिप्स देते। और चलन में क्या होना चाहिए? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप चलो तो कॉन्फिडेंस वाली चाल हो, कोई डर डर के चलने वाली चाल न हो। तो दुनिया के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी यही दो बातों के ऊपर विशेष ध्यान खींचा जाता है और उसी को डेवलप करने की टिप्स दी जाती है कि आपके, लेकिन वो सारी बाह्य स्वरूप की होती है। बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे तुम्हारे चेहरा और चलन, बाप की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बन जाए। अब ये चेहरा और चलन में क्या होना चाहिए? तो क्यों बाबा ने चेहरा और चलन कहा? क्योंकि चेहरे पर मुख्य रूप से पांच इंद्रियों में से चार इंद्रियां होती है, आंख नाक कान मुख और सूक्ष्म जो है मन बुद्धि संस्कार, ये सब चेहरे पर होता है। और चलन मतलब चरित्र। पहले के जमाने में व्यक्ति की चाल को देख करके उसका चरित्र परखा जाता था। जो घर में बुजुर्ग होते थे, घर में सुलक्ष्मी आई है या कुलक्ष्मी आई है उसकी चाल से बता देते थे, उसके नैन चैन से बता देते थे कि ये सुलक्ष्मी है या कुलक्ष्मी है। तो चलन माना चरित्र। तो हमारे भी चेहरे में और चरित्र में क्या चीज होनी चाहिए। अब बाबा हमें हर बात सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हैं। दुनिया में देखो, किसी के चेहरे में, यानी ये चार इंद्रियां जो है वो जो कुछ भी ग्रहण करती है बाह्य दुनिया से, जो कुछ भी ग्रहण करती है उसी अनुसार उसकी मनोवृत्ति, उसकी दृष्टि, उसके बोल और उसके विचार आकार लेने लगते हैं। तो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बोल, ये सब जो है वो आकार कैसे लेते हैं कि बाह्य दुनिया से जो कुछ भी ये इंद्रियों ने ग्रहण किया उसी अनुसार वो शेप बनता जाता है। अब दुनिया के अंदर लोग क्या ग्रहण करते हैं, चाहे आज टेलीविजन देखते हैं उसमें से क्या ग्रहण करते हैं, या जो बातचीत होती है या दुनिया के अंदर क्या ग्रहण करते हैं, तो विकारों को ही ग्रहण करते हैं। और जब विकारों को ग्रहण करते हैं तो ये चेहरे में विकृति आती जाती है, संकल्प विकृत होने लगते हैं, भाषा उनकी विकृत होती है। भाषा में भी किसी को सुख देने वाले बोल नहीं होते हैं, दुख पहुंचाने वाले बोल होते हैं, चाहे वो क्रोध करते हुए या अहंकार के वश। तो जब उनके चेहरे के अंदर ये इंद्रियों ने विकारों को ग्रहण किया तो वही आंतरिक जो इंद्रियां हैं उसको वो आकार मिला, इसीलिए चेहरा उनका विकृत बनता गया। और वो विकृति ऐसी जो चलन में भी वो विकृति ले आती है, जो दूसरे जब उनको देखते हैं तो उनको डर लगता है, भय लगता है। इसीलिए आज दुनिया में इतना भय क्यों हो गया, डर क्यों हो गया, किसी पर वो विश्वास नहीं कर सकते हैं। कहते रात के समय अकेले नहीं जा सकते, डरते। क्यों डरते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनको मिलता है उस वक्त तो उनकी विकृति ऐसी होती है जो डरावनी हो जाती है। तो हमारे चेहरे और चलन में क्या ग्रहण करना है हमें, ये चार इंद्रियां चरित्र क्या ग्रहण करना चाहिए, तो बाबा ने तीन बातें बताई, रूहान्यत, दिव्यता और अलौकिकता को ग्रहण करो। रूहान्यत, दिव्यता और अलौकिकता को ग्रहण करो। जब ये तीनों चीज हम ग्रहण करते हैं तो हमारे संकल्प कैसे हो जाते हैं, हमारी दृष्टि कैसी हो जाती है, वृत्ति कैसी हो जाती है, बोल चाल कैसे हो जाता है, चरित्र कैसा हो जाता है। और इसीलिए दुनिया के लोगों से बाबा के बच्चे न्यारे दिखते हैं। कहीं भी होंगे न्यारे दिखेंगे, कहेंगे इन लोगों में कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, ये अवश्य सुनने को मिलता है। भावार्थ ये कि वो समझ नहीं पाते कि इनके अंदर क्या चीज है, लेकिन क्योंकि बाबा ने इतनी सूक्ष्म बातें हमें समझाई है और वही चीजों को ग्रहण करने के लिए विधि बताई है। विधि क्या है? आज की मुरली में भी बाबा ने जो बात कही, कही तो श्री कृष्ण के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात लगी कि देखो जो रॉयल घराने के लोग होते हैं उनके चाल चलन में रॉयल्टी होती है। तो श्री कृष्ण तो कितने रॉयल घराने का व्यक्ति था, कितनी रॉयल घराने की आत्मा थी, देव आत्मा, तो वो ऐसे कर्म कैसे कर सकता है कि वस्त्र चुराना, मक्खन चुराना, ये उसके कर्म में आ कैसे सकता है? कितनी अच्छी बात बाबा की एक ही लाइन थी आज कि श्री कृष्ण इतना रॉयल था तो उसके लिए ये जो बातें लिखी गई है ये जैसे सेट नहीं होती है। श्री राम के लिए ये बातें जो लिखी गई है वो सेट नहीं हो रही है, लेकिन ये बातें दुनिया के लोग नहीं समझेंगे। जो रॉयल घराने का व्यक्ति होता है उसका चेहरा और चलन कैसा होता है? बाबा कभी कभी साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते थे, क्योंकि बाबा का परिचय तो हमेशा रॉयल घराने के लोगों के साथ होता था, और वही रॉयल्टी बाबा के अंदर भी आ गई थी कि कोई भी नीचे गिरी हुई चीज वो जैसे अपने लिए इस्तेमाल करे ऐसा नहीं हो सकता था। उनकी रॉयल्टी उस अनुसार थी, तभी तो दुनिया में जो राजाएं होते थे वो भी बाबा की इस रॉयल्टी को देखते हुए कहते थे कि भगवान से भूल हो गई, राजा के गुण क्वालिटीज वो चेहरा चलन सब कुछ रॉयल्टी आपके अंदर है, हमें राजा बना दिया, है ना? तो ये चीज बाबा के संस्कारों में थी, चेहरे और चलन में थी, जो बाहर के लोग भी उसको एडमायर करते थे, जैसे उनको महसूस होता था कि ये कोई विशेष आत्मा है, तब ये कह देते थे कि भगवान से भूल हो गई। बाबा कहते थे भगवान से कभी भूल नहीं हो सकती, वरना श्री कृष्ण की आत्मा अपने 84वें जन्म में भी इतनी रॉयल और चेहरा चलन इतना रॉयल, तो हम भी तो उसी घराने के लोग हैं ना, उसी घराने की आत्माएं। तो जब उस घराने के हैं हम तो हमारे चेहरे और चलन में क्या होना चाहिए? वो रॉयल आत्माओं के चेहरे चलन में क्या दिखाई देता था? नशा। लेकिन बाहर की दुनिया के अंदर एक स्थूल नशा होता था, हमें बाबा ने कहा रूहानी नशा, नारायणी नशा। और वो नारायणी नशा को धारण करने के लिए वैसे निश्चय बुद्धि बनना जरूरी है। जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे तो निश्चय से नशा दोनों का कनेक्शन है। कोई बात में कोई व्यक्ति 100% सर्टन होता है, भाई 2+2=4 ये पता है, हम निश्चय है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो जो व्यक्ति को वो कैलकुलेशन के प्रति निश्चय है तो उसको नशा है कि मुझे आता है, कोई डाउट है ही नहीं, लॉजिक है ये। ठीक इसी तरह नशा हमारे जीवन में भी तब आएगा, वो फलक चेहरे पर वो चलन के अंदर नशे वाली नारायणी नशे वाली तब होंगे जब हमारे अंदर भी निश्चय बुद्धि कि हम ही वो आत्माएं हैं, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। इसीलिए हमारे अंदर ये डाउट नहीं आ सकता है कि पता नहीं मैं बनूंगी या नहीं बनूंगी, ये पता नहीं संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। इसीलिए ये निश्चय है हमें कि हम ही वो आत्माएं हैं और हमें पुनः बनना है। ये निश्चय जितना होगा दृढ़, उतना नशा हमारे अंदर स्वतः दिखाई देने लगेगा। और उससे अवस्था कैसी हो जाएगी? निश्चिंत, क्योंकि निश्चित भावी को जानते हैं कि जो कुछ भी होना है वो अच्छा ही है और अच्छा ही होना है, तो उसको कोई भी प्रकार का टेंशन, निश्चय बुद्धि आत्मा को कोई भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता है। उसके चेहरे पर वो टेंशन, परेशानी, डर, भय, ये भाव नहीं आ सकता है। एक ही भाव उसके अंदर होता है, निश्चिंत। ये है चेहरे और चलन के अंदर ऐसी अवस्था हो जाती है। रॉयल घराने के अंदर ये निश्चिंतता। दूसरा, जैसे रॉयल्टी के अंदर क्या भाव आता है, उनके चेहरे पर क्या भाव आता है, अपनी खुशनसीबी की, खुशनसीबी का या खुशकिस्मत होने का भाव जागृत होते हैं। राजकुमार कैसा होता है, उसको हर वक्त जैसे बिना मेहनत के जो मिला है तो वो खुशकिस्मत अपने आप को समझता है। अपनी खुशनसीबी का जो भाव है वो चेहरे से झलकता है कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, मेरे जैसा खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं। तो हम भी उस परम सर्वशक्तिमान के बच्चे, सुप्रीम सोल के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। हमारी खुशकिस्मत, खुशनसीबी और वो चेहरे पर भाव क्यों नहीं आता है? जिसके चेहरे पर खुशकिस्मती का भाव हो, यानी वो खुशी झलकती हो संपन्नता की, वो खुशी झलकती हो तो उसके चेहरे पर परेशानी की, टेंशन के कोई भाव आ सकते हैं? अगर मेरे चेहरे पर टेंशन का भाव है तो इसका मतलब मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझा ही नहीं है, खुश नसीबी का अनुभव ही नहीं किया है। और उस खुशकिस्मत के कारण अहंकार नहीं दिखाते दुनिया में, तो रॉयल घराने वाले उसके अभिमान में आ जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो अहंकार नहीं दिखाते हैं। लेकिन क्या आता है, बाबा जो कहते हैं एक रूहानी मुस्कुराहट, है ना, जोर जोर से हंसने वाली बात भी नहीं है। इसीलिए कई बार साकार मुरली में बाबा कहते हैं देवताएं कैसे मुस्कुराते हैं। जोर जोर से हंसना ये भी एक विकृति है, ये बाबा के, साकार बाबा के भी शब्द है, क्योंकि बाबा ने उन रॉयल घराने के लोगों को देखा है, वो जोर जोर से हंसते नहीं है। उसमें भी जैसे बाबा कहते हैं विकारों की बदबू आती है, लेकिन मुस्कुराहट, एक दिव्य मुस्कान, है ना। बाबा जब आते हैं, कई बार बाबा जब दादी के तन में आते हैं तो बाबा के आने से लेकर के जाने तक वो दिव्य मुस्कान जो दादी के चेहरे पर जो झलकती है, कितनी सुंदर, वही तो सबको आकर्षित करती है, खींच खींच के यहाँ ले आती है ना। तो बाबा कहे आपके चेहरे पर भी वही खुशकिस्मती का जो भाव, एक दिव्य मुस्कान हो, दिव्य मुस्कान। तीसरा भाव कौन सा होता है रॉयल फैमिली के लोगों में? संपन्नता का, भरपूरता का। वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं है। तो हमारे अंदर भी आत्मसंतुष्टि का, जैसे बाबा कहते हैं रॉयल फैमिली वालों की नजर कहीं, आंख जो है किसी की चीज में डूबती नहीं है, तो हम भी उस रॉयल बाप के बच्चे, तो हमारी नजरें भी किसी चीज में डूबे, ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए चाहिए की चाह ही नहीं है। क्योंकि भरपूरता है, आत्मसंतुष्टि अंदर से है, इतनी संपन्नता का भाव है जो हमारी आंखें भी कहीं डूब नहीं सकती है। हर सुंदर चीज को अप्रिशिएट जरूर करे, लेकिन ये चाहिए ही मुझे, ये भाव, ये संकल्प हमें परेशान नहीं कर सकता है, इतनी भरपूरता अंदर में समाई हुई। तो ये तीन भाव रॉयल फैमिली के लोगों पर दिखाई देता है। तो हमारे चेहरे और चलन में भी ये तीन भाव। लेकिन ये भाव कब आएगा, उसके लिए धारणाएं क्या है, क्या धारणा करनी चाहिए जो ये भाव स्वतः नेचुरल रूप में आ जाए, हमें आर्टिफिशियली ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं, लेकिन नेचुरल रूप में हमारे में समा जाए। तो उसके लिए पहली धारणा जो है वो है अंतर्मुखता की धारणा, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मुझे करना है, उस फीलिंग को लेकर के आना है, तो अंतर्मुखता जितनी हमारी होगी, साइलेंस की शक्ति जितनी अंदर में आती जाती है, तो ये कर्मेंद्रिय को शीतल करती जाती है। अंतर्मुखता क्या करती है, साइलेंस की शक्ति को ले आती है, और ये साइलेंस की शक्ति हर कर्मेंद्रिय में शीतलता ले आती है। और जब ये शीतलता आ जाए तो जो चंचलता है उसकी वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए अंतर्मुखता की धारणा बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे किसी व्यक्ति, कोई अगर आर्टिस्ट हो और वो कोई चीज बना रहा हो, तो पहले तो बाबा भी जैसे कहते हैं कि किसी किसी को देख करके दुनिया में भी लोग कहते हैं इसको तो जैसे सचमुच स्वयं भगवान ने बैठकर बनाया है। तो हम सबको तो एक एक को बैठ के भगवान ने बनाया है ना, कितने हम भाग्यशाली हैं जो एक एक को भगवान साक्षात बैठकर संगम युग पर बना रहा है। तो ये जो तपस है, कर्मेंद्रिय की चंचलता है, इस चंचलता को समाप्त करने के लिए अंतर्मुखता का गुण धारण करते हैं, शांति की शक्ति को भरते जाते हैं, तो हर कर्मेंद्रिय शीतल बनती जाती है। अच्छा, शीतल बनने के बाद क्या करना चाहिए, उसमें चमक लानी चाहिए। तो हर चेहरे पर चमक कैसे आएगी, तो बाबा के सकाश से पवित्रता को धारण करते जाते हैं। और जैसे जैसे पवित्रता हमारे अंदर आती है, तो चमक अंदर से निखार आने लगता है, वो चेहरे पर चमक आने लगती है। और जैसे जैसे ये चमक बढ़ती जाती है, ये निखार बढ़ता जाता है, तो उसमें भाव कौन सा आएगा? निर्मलता का भाव, प्योर, एकदम निर्मल। जैसे बड़ी दादी जी हमेशा ये स्लोगन देती थी, निर्मलता, उसमें अभिमान का भाव नहीं आएगा। तो पवित्रता की धारणा से वो चमक ऐसी आने लगेगी चेहरे और चलन में कि निर्मलता उसमें से टपकने लगेगी। तभी तो कहा भगवान बैठ के बना रहा है, कोई साधारण मनुष्य थोड़ी बना रहा है हमें। निर्मलता आती जाती है, कितना सुंदर है ना वो स्वरूप बनता जाता है, वो निखार आता जाता है। पवित्रता के बाद फिर क्या करता है बाबा? उसके बाद तीसरी धारणा जो है वो है मुरली कभी मिस नहीं करना, ज्ञान की धारणा। और जितना ज्ञान की एक एक बात को हम जीवन में धारण करते जाते हैं, उतना आत्मा अंदर से परिपक्व होती जाती है। ज्ञान से ही परिपक्वता आती है। और जैसे कोई दुनिया में भी परिपक्व व्यक्ति होता है, उसको छोटी मोटी बातें अंदर से हिला नहीं सकती है, उसको अंदर से कोई भी बात परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास हर बात का एक जवाब है। उसकी परिपक्वता, अनुभव उसके अंदर वो विकसित कर देता है, और उसी से ही हमारी स्थिति निश्चिंत और निश्चित हो जाती है। कि हलचल में नहीं आ जाते हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया, ये हलचल वाली स्थिति नहीं आती है, क्योंकि परिपक्व है। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के एक एक पॉइंट शस्त्र है, और वो शस्त्र जो भी बातें आती है उन बातों को काटने का काम करता है, समाप्त करने का काम करता है। जैसे कोई भी रॉयल फैमिली वाले के पास शस्त्र न हो उसके शस्त्रागार में, ऐसा हो सकता है? कई बार जब देखने जाते हैं राजाओं के महलों को दुनिया के अंदर, तो भी एक कमरा खास शस्त्रगारों का होता है कि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे, ऐसी ऐसी तलवारें थी, ऐसे ऐसे तीर कमान थे। तो शस्त्र न हो ये हो नहीं सकता है। तो हम भी तो उस रॉयल घराने के हैं, तो हमारे शस्त्र कौन से हैं? ज्ञान के एक एक पॉइंट हमारे लिए शस्त्र, और ये शक्ति का कार्य करता है। समय आने पर जो ज्ञान की बातों को हमने जीवन में धारण किया है, उस ज्ञान की पॉइंट को यूज करते हुए विचलित होने के बजाय, घबराने के बजाय, हम अपनी शान में रहते हैं। तो शान में रहना सिखाता है ज्ञान की धारणा। तो ज्ञान की बातें, जितनी ज्ञान की पॉइंट्स को धारण करते जाते हैं, समय पर उसको यूज करते जाते हैं, सही वक्त पर सही ज्ञान की पॉइंट को यूज किया, तो उसका अनुभव मिल जाता है। तो वो अंदर से हमें हिलाता नहीं है, विचलित नहीं करता है, लेकिन एक ठहराव आने लगता है, गंभीरता आने लगती है, और वो गंभीरता, धैर्यता अंदर में इन गुणों को विकसित करती है, ये ज्ञान की धारणा। इसीलिए बाबा कहते हैं हर रोज जो बाबा मुरली सुनाता है उसमें से कोई ना कोई एक चीज को भी धारण कर ले, चाहे वरदान को ही धारण कर ले, चाहे स्लोगन को ही धारण कर ले, चाहे मुरली का सार ही धारण कर ले, तो भी बहुत उस दिन के अनुभव के लिए जैसे बहुत खजाना हमारे पास जमा होता जाएगा। और इतना अनुभव का खजाना होगा जो हमें कोई भी बात न विचलित कर सकती है, न परेशान कर सकती है, न अंदर से हिला सकती है, लेकिन ऐसी धैर्यता, गंभीरता, परिपक्वता हमारे स्वरूप में आ जाती है जो उस बात को बहुत सहजता से हम पार कर सकते हैं, निर्विघ्न हो सकते हैं। दूर से ही अगर कोई विघ्न आता है तो वो विघ्न हमें हिला नहीं सकता है, लेकिन वो विघ्न दूर से ही जैसे भस्म हो जाता है। ये है ज्ञान के तीर या शस्त्र का काम, नॉलेजफुल ही पावरफुल बन जाता है। ये बाबा ने हमेशा कहा कि ज्ञान की शक्ति स्वयं को इतना समर्थ बना देती है, अंदर से जैसे हमारे खजाने को भरपूर कर देती है। चौथी धारणा, जैसे ज्ञान आ गया फिर उसके बाद योग की शक्ति को भरना जरूरी है, नित्य बाबा को याद करना जरूरी है, क्योंकि जितनी अंदर में योग की शक्ति भरते जाएंगे तो अंदर से जैसे कोई भी कमी कमजोरी होती है वो जलकर भस्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और आत्मा शक्तिशाली बनने लगते हैं, जो बाबा कहते हैं जौहर, जौहर भर जाता है। और याद के माध्यम से सारी शक्तियां अंदर आ जाती है, जो शक्तियां ही हमें अष्ट और इष्ट का पद दिलाती है। उसमें भी हमेशा बाबा कहते बच्चे अगर ये अष्ट शक्तियां भी जीवन के अंदर आ जाए तो ये अष्ट शक्तियां भी इष्ट का स्वरूप धारण करने में, इष्ट बनने में आपको मदद करेगी। लेकिन सही समय पर सही शक्तियों का प्रयोग करना, जौहर का काम करता है वो। जैसे ज्ञान के तीरों के ऊपर अगर योग का जौहर लग जाए तो सामने वाले की हालत क्या होगी, फिर बच नहीं सकता है, कोई विघ्न हमारे सामने टिक नहीं सकता है, समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये योग का जौहर हमारे चेहरे और चलन में आ जाए, योग की शक्ति। और फिर लास्ट में जब ये सब कुछ आ गया तो क्या होगा, संतुष्टता और प्रसन्नता का गुण, संतुष्टता, भरपूरता। तो जैसे कहा कि रॉयल फैमिली कि नजर कहीं डूबती नहीं है, आंखें कहीं डूबती नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में स्वयं को भरपूर महसूस करते हैं। तो इसी तरह जब इन चीजों से हम भरपूर हो जाते हैं, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति से जब अपने आप को भरपूर कर लेते हैं तो आत्म संतुष्टता का भाव, भरपूरता का भाव चेहरे और चलन से चमकने लगता है। और उसके चेहरे पर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, लेकिन प्रसन्नता निरंतर झलकती रहती है। तो ये प्रसन्नता ही हमें अपने खुशकिस्मती या खुश नसीबी का अनुभव कराता है, भरपूरता। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में, इतने भरपूर बाबा ने हम बच्चों को कर दिया है हर रीति से। तो ये मुख्य धारणाएं हैं चेहरे और चलन से सेवा करने के लिए। तो अब अपने आप में हमें देखना है कि अब इन बातों से हमने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्योंकि जो अपने आप को इन बातों से तैयार कर लेता है तो अंतिम समय वही प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हैं। बाबा उन आत्माओं को ही विशेष प्रत्यक्षता के पर्दे को उठाने के कार्य में निमित्त बनाता है, और जो आत्माएं निमित्त बन गई तो निमित्त बनने का भी एक भाग्य बहुत बड़ा है। इसीलिए नंबर बन जाते हैं, अंतिम समय नंबर बनेंगे, क्योंकि जो तैयार हो गए। इसलिए कई बार बाबा की पहले की अव्यक्त मुरली सुनते तो बाबा कई बार पूछते, बच्चे पर्दा खोलू, अब पर्दा खोलू अभी, माना आप रेडी हो गए, तो माना ये अंतिम साक्षात्कार कराने के लिए हम तैयार हो गए। अभी अभी अपने आप को देखना है, अगर हम तैयार हो गए और बाबा को कहा यस बाबा हम तैयार है, इतना हमने जमा का खाता अपना भरपूर कर दिया, मेवर रेडी है अभी, तो बाबा उन आत्माओं को फिर स्टेज पर आगे खड़ा करके उनके द्वारा प्रत्यक्षता के पर्दे को खोलेंगे, और वो बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए जो निमित्त बनता है, तो निमित्त बनने का भाग्य, वो बाप समान बन गए, तभी बाबा ने उनको निमित्त बनाया, और फिर दूसरे उनके राजधानी में फॉलो करने वाले हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे अपने आप को देखो कि हम बराती हैं या हम साथ चलने वाले, बाबा के साथ साथ चलने वाले, ये अपने आप को देखना है। इसीलिए कहा कि ये इंद्रियां जो ग्रहण करती है उसी अनुसार हमारी मन वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, बोल, कर्म, हर चीज आकार लेने लगती है, हमारे संकल्प वैसे उठने लगते हैं। उस आधार से देखो, अगर अभी तक भी हम अपने संस्कारों को कंप्लेन कर रहे हैं, क्या करें मेरे संस्कार ऐसे हैं, क्या करें मेरे संस्कार मुझे तंग कर रहे हैं, तो अब उन संस्कारों में कौन सी बात है, कौन सी कमी है, उसको चेक करते हुए उसको भरपूर कर देना इन धारणाओं से। और जैसे उसको भरपूर कर देते हैं तो फिर संपन्नता उस चेहरे और चलन के अंदर स्वतः आ जाती है। इसलिए कहा दुनिया के लोग भी आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना अटेंशन दे रहे हैं, हमें तो बाबा ने एक नेचुरल पर्सनालिटी डेवलप करने की इतनी सुंदर विधि बता दी है, बिना कोई खर्चे, बिना कोई वो लोग तो कितना खर्चा करते हैं अपने चेहरे के पर लिपापोती करने के लिए, है ना। बाबा ने हम बच्चों को कहा था कि तुम बच्चे पाउडर भी नहीं लगा सकते हैं, पाउडर लगाने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। अभी दो चार दिन पहले की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम्हें पाउडर लगाने की भी जरूरत नहीं है। और वो लोग एक एक व्यक्ति का जब सुनते हैं कि अपने चेहरे को माना फिट दिखने के लिए क्या नहीं खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, है ना, तो लगता है कि सारा उनका पैसा जो कमाते हैं वो उसी के पीछे ही जाता होगा चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। और बाबा ने हमें नेचुरल ब्यूटी दे दिया, और इतनी सुंदर विधि से बाबा ने हमें ये नेचुरल ब्यूटी दे दिया, तो बस उसके बाद तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, अब अंतिम समय नजदीक आता जा रहा है, आसार भी दिखाई देते हैं, हालातें भी दिखाई देती है दुनिया की, तो हमें अभी फोकस करना है कि हम उसमें ही ये इंद्रियों के अंदर ये रूहानियत, दिव्यता और अलौकिकता को ग्रहण कर लेवे और अपने आप ये शेप लेने लगे, है ना। तब उस सांचे में से जितने भी निकलेंगे तो हरेक कहेगा ये ब्रह्मा कुमारियां या ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो भी है, जैसे सब एक जैसे लगते हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जैसे एक जैसे, इनका बोल चाल भी एक जैसा होता है, इनका जैसे एक ही सांचे में से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा ही लगता है। तो बाबा की ये मशीनरी तो है, सांचे तो बने हुए हैं, बस हमें अपने आप को उस सांचे के अंदर ढाल देना है, और जितना जल्दी ढाल देंगे ना, जितना जल्दी ढाल देंगे उतना वो सूरत मूरत वैसी बनती जाती है और निकलते जाएंगे, और प्रत्यक्षता के लिए हम तैयार हैं, और हम बाबा को कह सकते हैं हम एवर रेडी है, अभी आप पर्दा उठा सकते हो, हम आपकी प्रत्यक्षता करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो ये थी आज की चेहरे और चलन द्वारा प्रत्यक्षता की सेवा कैसे करनी है अंतिम समय में, उसके ऊपर ध्यान देना। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और बाबा की याद में बैठते हुए अपने आप को उस शक्तियों से सशक्त करेंगे, प्रकाश भरेंगे और अपने स्वरूप को दिव्य और अलौकिक बनाएंगे।
ओम शांति। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, मेरे शांत स्वरूप भाइयों और बहनों, आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी ईश्वरीय सौगात नहीं ली है, कृपया शांतिपूर्वक उठकर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर ईश्वरीय सौगात ले ले। शांति से उठेंगे, हलचल नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे। ओम शांति।
आगे की लाइन खाली करवाने तो नहीं है ना। अब जैसे ही हम कमेंट्री देते जाएंगे और उस कमेंट्री के आधार पर आप अपने मन के अंदर उसी भाव को इमर्ज करते हुए उस अवस्था में अपने आप को स्थित करेंगे, लेकिन एक निवेदन हमारा जरूर रहेगा कि जब कमेंट्री चलती हो तो बीच में से कोई भी उठेगा नहीं, या बीच में कोई आकर के सारे लोगों को डिस्टर्ब करते हुए क्रॉस करके आकर बैठने का प्रयास न करे, वो तो साइड में ही बैठ जाए या पीछे जाकर के बैठे ताकि किसी को भी डिस्टर्बेंस न हो। जितनी शारीरिक एकाग्रता हमारी होगी उतनी मन की एकाग्रता को हम सहज विकसित कर सकेंगे, और ये मन की एकाग्रता ही हमें अनुभव करने में मदद करेगी। तो तन और मन का बहुत गहरा आपस में कनेक्शन है। अगर मन अंदर हिलता डोलता रहेगा तो शरीर भी हिलता डोलता रहेगा, है ना। तो इसीलिए जितना शरीर हमारा स्थिर है, जितनी हमारी इंद्रियां अनुशासन में है, इंद्रियां हमारी कंट्रोल में है, उतनी मन की एकाग्रता को डेवलप करना सहज हो जाएगा। तो इसलिए जो भी उठना चाहे पहले ही उठ जाए, अगर फ्रेश होने भी जाना है तो पहले ही उठ जाए और फिर पीछे आकर के बैठ जाए, ऐसे नहीं वापस सबको डिस्टर्ब करते हुए अपने स्थान पर आके बैठना है, ये अंदर में नहीं रखना। नहीं तो आप जितनों को डिस्टर्ब करते हुए जाएंगे उनके योग टूटने से किसी को प्रसन्नता नहीं होती है, चेहरा थोड़ा भी बिगड़ता है तो वो भी एक प्रकार की दुआएं नहीं बद्दुआएं बन जाती है। तो इसीलिए हम सभी अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं में अंतर्मुखी हो जाते हैं, मुख को अंदर कर लेते हैं, सर्व कर्मेंद्रिय को शांत और अनुशासन में कर्मेंद्रिय की एकाग्रता दृढ़ता की पट्टी से उसको बांध लेते हैं। और धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ये देह और देह की दुनिया से उपराम करते जाते हैं। और उड़ान भरते हैं अपने वतन की ओर। अपने सूक्ष्म अंतवाहक स्वरूप द्वारा अपने सूक्ष्म वतन की ओर जाते हैं। जहां मुझ आत्मा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप विराजमान है, मैं उस चमकीली ड्रेस को धारण करती हूँ। और स्वयं को देखती हूँ कितना दिव्य और अलौकिक स्वरूप है मेरा। अपने चेहरे में वो दिव्यता को इमर्ज करती हूँ। पवित्रता की शक्ति से चेहरे में उस दिव्यता को विकसित करती हूँ। ज्ञान की शक्ति से स्वयं में। परिपक्वता महसूस करती हूँ। धैर्यता गंभीरता का स्वरूप है। बाबा की याद की शक्ति से स्वयं को सशक्त महसूस करती हूं। जैसे ही अपने स्वरूप में संपन्नता के भाव को इमर्ज करती हूँ, भरपूरता की स्थिति है। मेरे स्वरूप में निर्मलता है। पवित्रता की चमक है। संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी को भरते हुए स्वयं को अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख देखती हूँ। इतनी न खुशकिस्मत खुश नसीबी है मेरी बाबा के मस्तक से पावरफुल प्रकाश स्वयं में अनुभव कर रहे हैं। बाबा की प्रकाश से स्वयं में रूहानियत और दिव्यता का निखार आता जा रहा है। मेरा स्वरूप निर्मल बनता जा रहा है। धीरे धीरे इस संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप को भी छोड़ते हुए मैं आत्मा परम धाम में स्वयं को देखती हूँ। शिव बाबा चैतन्य बीज है, मैं भी बीज स्वरूप भरपूरता की महसूस